نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے ہم مدنی دور کر رہے ہیں اور بیت عقبہ ثانیہ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مدینہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے ہموار کیے چھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ لگوایا ایک سال کے بعد وہ 12 ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو جس میں وہ نام بھی تھے کہ جن کو بہت زیادہ دیر تک اسلام کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا یعنی مصعب بن عمیر ان کو مدینہ بھیجا وہاں اسد بن زرارہ اور اسی طرح پھر بعد میں سعد بن معاذ جیسی بڑی ہستیاں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں اور جنہوں نے واقعی پھر اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگایا آج ہم پڑھیں گے بیت عقبہ ثانیہ یعنی یہاں سے آپ کو گریجویلٹی بھی دکھے گی کہ کسی بھی جگہ پہ دین کا کام کیسے شروع ہو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہمارے علاقے میں کچھ ہو ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ملک میں کوئی ہو ہمارے شہر میں کوئی ہو ہماری مسجد میں کچھ ہو تو دیکھیں یہ سیرت جو ہے یہ ہم سب کے لیے عملی پہلو دکھا رہی ہے تھوڑے سے لوگوں سے کام شروع کرنے کام کرنے والے اگر جمے ہوئے ہیں کام کوالٹی کا ہے ایک دن آئے گا بہت سارے پتے اور بہت سارے پھول لگیں گے اور بہت نہ بھی لگ سکے تو جو تھوڑے سے بھی ہوں گے وہ بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی اپنے حساب سے ضرور پیدا کریں گے ہم بہت سارے ہجوم جمع ہونے کے خواہش مند ہوں اور بہت لمبے لمبے ریسورسز مانگیں تو پھر تو شاید کبھی مدینہ میں بھی کام شروع نہ ہوتا تو دیکھتے ہیں کہ بیت عقبہ بیت تو آپ کو پتہ ہی ہے با یبی سے بیچنے کو کہتے ہیں لیکن بیت کا معنی ایک اصطلاح ہے حکیم وقت اور عالم دین جب دونوں ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بیعت کی ٹرم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ آپ سے یہ بیعت لیا کرتے تھے مطلب ایک قسم کا پلیج کہہ لیجئے وعدہ کرنا یا ایک کمٹمنٹ کرنا اور عقبہ گھاٹی کا نام تھا اور ثانیہ میں دوسری دفعہ وہاں ہو رہی تھی آئیے پڑھتے ہیں اسی دوران میں حج کا زمانہ آ گیا اب کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مکہ پہنچی مدینہ کی کھیتی خوب فصل دے رہی تھی یہ نئے جذبہ دینی سے سرشار ہو کر آنے والے حجاج قریش سے بچ بچ کر راتوں کی تاریکی میں اپنے قائد محبوب سے ملے اس کو نوٹ کریں شروع میں چھپ کے بھی دین کا کام کرنا پڑے تو کریں ضروری نہیں کہ ہر وقت دین کے کام کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ کوئی آسانیاں ہی ملے بعض دفعہ جان تک خطرے میں ہوتی ہے اس پر پھر عہد وفا سر نو استوار کیا گیا یعنی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ صحابہ کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی لیکن اب کی معاملہ بیت النساء سے بہت آگے تک جا پہنچا پیچھے دیکھا تھا نا کہ بیت النساء تھی کیوں بلا کیا وہ عورتوں سے ہوئی تھی نہیں باتیں بہت سمپل تھیں یعنی عموماً جس میں عورتوں کا کام ہوتا ہے یعنی بہت کوئی جنگ و جدال کی باتیں نہیں تھی ظاہری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بات تھی کہ جو کسی بھی معاشرے پہ بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں پہلی بیت میں سیاسی پہلو صرف ایک نقطے سے نمایاں ہوتا تھا یعنی یہ اقرار کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف احکام سے سرتابی نہیں کریں گے یعنی جو پہلی بیعت تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حکم ماننے کا اقرار تھا اور آپ ہمیشہ معروف ہی کا حکم دیتے ہیں دوسرا تو نہیں کر سکتے تھے لیکن اس مرتبہ سیاسی پہلو پوری خطرناکیوں کے ساتھ سامنے آ گیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے معنی کیا تھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے معنی قریش اور سارے عرب کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے تھے اور یہی معنی سامنے رکھ کر بیعت ثانیہ استوار کی گئی گفتگو میں تحریک اسلامی کے یثربی یثربی کون ہوئے مدینہ میں رہنے والے یثربی سپاہیوں نے پیش آئند ممکنات کا پورا اندازہ کر کے یہ کہا یعنی یہود کے ساتھ ہمارے معاہدانہ روابط ہیں اور ہمیں ان رابطوں کو توڑنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم یہ کر چکے اور پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو آپ اپنے خاندان والوں کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں بات سمجھ ہے یعنی میں تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بتاؤں تاکہ آپ کو بات تھوڑی آسان لگے پہلی بیعت جو تھی نا وہ انفرادی کاموں کی تھی چوری نہیں کرنا شرک نہیں کرنا زنا نہیں کرنا اس طرح کی باتیں کسی بھی سوسائٹی میں ایسے کام کرنے پہ کوئی ریئیکشن نہیں اٹھتا لوگ سب کہیں گے بہت اچھی بات ہے ایتھکس ہیں بہت اچھا ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایسے ہی کرنا چاہیے बट अब बात थोड़ी सी बढ़ रही थी। यहूद उस बस्ती में पहले से दीनदार तबके के नाम पे मारूफ थे। अब जब मुसलमानों के साथ वो मायदा करते हैं, गोया के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकमियत को कबूल करते हैं, तो खतरा था कि यहूद कोई खतरा उठाएं। अब जिन लोगों के पहले से यहूद के साथ मायदे हुए हुए थे, गोया कि उनकी यहूद से दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो गोया कि आप कह लीजिए कि अब बैत को थोड़ा सा सियासी रंग दिया गया। और मदीना वाले क्या मेक श्योर करना चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी उनसे दुश्मनी हो जाए तो फिर आप भी चले जाएं। बात समझ आ रही है ना आपको? तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला करते हुए उनको ये वक्त देखना पड़ा। अब अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, कितना मीठा जवाब है। अंदेशा क्या था मदीना वालों का कि अब आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे? इस अंदेशे के जवाब में मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन है, मैं तुम्हारा और तुम मेरे, जिससे तुम्हारी जंग इससे मेरी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह इससे मेरी सुलह। अब्बास बिन उबादा ने कहा है, खजरज वालों, जानते हो कि इस हस्ती के साथ किस बात का पैमान बांध रहे हो? ये लोगों में से सुर्खों स्याह से जंग का पैमान है। यानी उनको ये समझ आ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना सबको अपना दुश्मन बनाना है, और ऐसे ही होता है। हक का साथ देने वालों को चुमुखी जंग लड़नी पड़ती है। चारों तरफ कहीं नफ्स परस्त लोग होते हैं, कहीं आबा परस्त होते हैं, कहीं खानदान होते हैं, कहीं कुछ। तो कहा, देख लो कि अब तुम जंगे मोल ले रहे हो, ठीक है ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अहले वफद ने पूरी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जवाब दिया कि हाँ, हम अपने मालों की तबाही, अपने सरदारों के कत्ल के अलरगम आपके साथ अहदो पैमान बांध रहे हैं। यानी कि हमें पता है अगर हमारे माल भी इस रास्ते में तबाह हो गए, हम तैयार हैं। अगर हमारे सरदार कत्ल कर दिए गए, हम इन सारी बातों को समझते हुए सोचते हुए आपके साथ बांध रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि मदीना वालों ने आपका साथ जज्बाती होके नहीं दिया। देखिए, बहुत लोग बहुत जज्बाती होते हैं, जब उनके जज्बात जोश में आते हैं ना, खूब उछलते कूदते हैं, उछलते हैं उछलते हैं, फिर ठंडे होके बैठ जाते हैं, फिर पता ही नहीं वो हैं किधर, वो किधर गया, वो जोश था खत्म हो गया। तो दीन का काम वो लोग कर सकते हैं जो कांस्टेंट मिजाज होते हैं, जज्बात से, नफरत से, मोहब्बत से ऊपर उठकर वो दीन का काम उनकी गुट्टी में पड़ चुका हो कि ये हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और ये मदीना वालों में खूबी थी, तभी देखिए कि इतनी मुश्किल आई, लेकिन वो पीछे नहीं हुए। इस बैत की खास नौयत ही की वजह से इसका नाम बैते हर्ब पड़ गया। तो आप नोट कर सकते हैं ना कि बैते अकबे सानिया का दूसरा नाम बैते हर्ब, यानी जंग वाली बैत। इस बैत की एक मरकजी शर्त यह थी कि हम तंगी में, आसानी में, खुशी में और रंज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर इरशाद सुनेंगे और इसकी इताअत करेंगे, हजूर को हजूर के फरमान को अपने आप पर तरजीह देंगे। और ये कि हम अरबाब अमर से, अरबाब अमर क्या होते हैं, जो कामों को देखने वाले हैं, इनसे कशमकश नहीं करेंगे। और ये कि हम अल्लाह के दीन के मामले में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। आप देखें, जब इतनी कमिटमेंट करने वाले साथी हों तो फिर अल्लाह मदद क्यों ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीना में मदद की गई अल्लाह की तरफ से, उसके पीछे अंसार की ये बैत बड़ी अहम थी। और ये सिर्फ कहा नहीं था, करके दिखाया था। ये बैत गोया के इस्लामी कसरे रियासत की पहली ईंट थी। यानी अगर इस्लाम का एक महल बन रहा था तो उसमें ये पहली ईंट थी। इससे क्या पता चलता है, कहीं भी काम करने से पहले वहां काम करने के लिए जो लोग तैयार हैं उनसे कमिटमेंट ले लें, वो जमगे बाकी खैर है, और अगर वही ढीले हो जाएं तो फिर बाकी आने वाले भी ज्यादा दिन नहीं आ पाते। और साथ के साथ किताब तहरीक में लिखे जाने वाले बाबे हिजरत का दिबाचा इस बैत के जरिए मुस्तकबिल की इस्लामी रियासत के लिए गोया इसके होने वाले शहरियों ने बरज़ और रग़बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को कबूल कर लिया। इसके अलावा समा व इताअत का निज़ाम इस्तवार कर दिया गया, यानी टीम मुकम्मल हुई, एजेंडा बन गया। किसी भी काम के करने की ये दो क्वालिटीज लाजमी होती हैं, काम करने वाले मौजूद हों और काम क्या करना है ये भी पता हो, फिर तो बंदा बड़े से बड़े काम कर लेता है। और अगर जमे हुए ठुके हुए लोग ही ना हों और ये पता ही नहीं करना क्या है, तो ऊपर की बातें उड़ती उड़ाती, इधर से उधर घूमती घामती बातें, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। इस मौके पर सिर्फ एक ही पैमान नहीं बांधा गया बल्कि इज्तमाई नज्म की बुनियाद भी उठा दी गई। इस्लामी तहरीक के काफिला सालार ने शहरी जमात की राय से 12 नकीब मुकर्रर किए, 9 खजरज में से 3 औस में से। ये खजरज और औस कहाँ के रहने वाले थे? मदीना के लोग थे, दो गिरोहों में थे, उन दो में से 9 खजरज के 3 औस के। और खजरज जो था ना अमीर कबीला था, बड़ा था, इन लीड्स लोग थे, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई भी कबीला खजरज से ही था। औस नस्बतन गरीब लोग थे, तो वो थोड़े थे, ये दूसरे ज्यादा थे। नकीब किसको कहते हैं? सरदार। इन नकीबों को मामूर किया गया कि तुम अपनी कौम के सारे मामलात के जिम्मेदार हो, बिल्कुल इसी तरह जैसे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारी जिम्मेदार थे, और जैसे खुद मैं अपनी पूरी जमात का जिम्मेदार हूँ। ये गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब थे। इनके तकर्रुर से मुनज़्ज़म मुआशरे की तामीर का काम बाकायदा शुरू हो गया। यानी जो काम करना है प्लानिंग से करना है, ये है इसका नुक्ता। पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, फिर अल्लाह की मदद आती है। कुरैश के कान में भिनक पड़ी, भिनक से मुराद ये कि बात निकल गई, तो सटपटा गए। वफद जा चुका था इसलिए ताकुब किया और साद बिन अवादा और मुनजर बिन अमर को गिरफ्तार करके लाए। इस पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला लेकिन सांप निकल गया था। अब लकीर पीटने से क्या हासिल था? क्या पता चला कि दुश्मनों को खबर कब होती है या होनी चाहिए? जब काम हो जाए, शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग शोर पहले मचा देते हैं बाद में काम हो ना हो, और बाद दफा शोर मचाने का नुकसान क्या होता है कि दूसरे वो काम कर लेते हैं, आप वो काम नहीं कर पाते। तो फिर आपके मेरे लिए इसमें सबक क्या है? कामों को ठीक तरह करें। देखिए, जिसको भी दीन के काम के लिए गाइडलाइन चाहिए उसके लिए सीरत को पढ़ना लाजिम है। इसके अलावा ठुकरे हैं, आप कोई दीन का काम शुरू करें ना और बाद में परेशान हो, तो मान लीजिए आपने सीरत पे अमल नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत नहीं सीखी। इसके बाद मदीना में तहरीक का नया मद्दोजजर है। अब आप इमेजिनेशन में खुद को वहीं ले जाए ना। मदीना एक अपने दौर पे बस रहा था, भाई बीच में एक नया इजाफा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सहाबा आ रहे, अब हर रोज कहीं ना कहीं से कोई बात सुनने मिलेगी। वो मुसलमान हो गया, उसके घर में उसकी बीवी इस्लाम पे आ गई। अब वो एक उल्टम पुलटम शुरू हो गई बात। लोग कहेंगे हम तो मुतमईन थे, चलो सारे मिलके गुनाह कर रहे थे, हम खुश तो थे ना। ये इन्होंने आकर पता नहीं क्या घरों में फितने डाल दिए, इन्होंने हमें मुश्किलों में डाल दिया, इन्होंने पता नहीं हमारे लिए क्या खड़ी कर दी। थोड़ा सा यहाँ समझिए, दीन का काम कहीं भी हो, चाहे वो आपके घर में होने लगा, आपके 5 से 6 फुट के वजूद में हो रहा है, किसी स्कूल, किसी मुल्क, किसी शहर में हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपको कोई पथरीली जमीन दे दे, कहे कि इस पे घर बनाओ। अब उस पथरीली जमीन को पहले क्या करना पड़ेगा? बिल्डोजर के साथ सीधा करना पड़ेगा, तोड़ेंगे ना, तो तहरीबकारी होगी। कोई तहरीबकारी ना करे और वो टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे घर बनाना चाहे, कैसा घर बनेगा? पहले बुलडोजर चलेंगे, डायनामार मारा जाएगा, खुदाल आएंगे, मट्टी उड़ेगी, घर से बेघर लोग होंगे, फिर हमवार होगी जमीन, तो फिर घर बनेगा। मेरे आपके मुआशरे में आज के दौर में दीन का यही हाल है। आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस और सीरत और सुन्नत, जो कुछ आप पढ़ते हैं, इसका असर अपनी जिंदगियों में देखें, तो पहले आपको अपने खानदानों के टीले टिब्बे निकालने पड़ेंगे, अपने घर के पत्थर रोड़े निकालने पड़ेंगे, उसमें फिर रिएक्शन होगा। मट्टी उड़ रही है, गले में गुबार आ रहा है, शोर क्या लगाया हुआ है, कोई बीमार भी होता है, शोर से क्या टक टक, क्या दीन दीन की रट, ये तखरीब से दीन का काम शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमवारी आएगी। अब वो जो बेचारे पत्थर तोड़ रहे हैं वो छोड़ते हैं ये काम लोगों के रिएक्शन से, तो फिर तो और ही खराबी हो गई। चले पहले जमे हुए पत्थर थे, अब तो आपने उनको छेड़छाड़ के और ही मट्टी कर दी। काम करते रहे, काम करते रहे, स्लो इजी स्टडी करते जाए, एक वक्त आएगा आपके अपने घरों में आपके लिए वुसत पैदा होगी। ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, आपके मुल्क में, आपके मुआशरे में, आपके कानून में आपके लिए जगह बनेगी। हमेशा जब इनकलाब आता है तो तखरीब से काम शुरू होता है, फिर तामीर होती है। हम कहते नहीं बस दीन आया, अब सारे हमारी तारीफें करें, हमारे गुण गाएं, हमारी तारीफें करें, कितनी अच्छी मेरी बेगम हो गई है, 5 वक्त की नमाजी हो गई है, इसको अपने नमाज रोजे की फिक्र है, इसको बच्चों की तरबियत की फिक्र है, नहीं होगा ऐसा। तो ये तखरीब से गुजरे बगैर तामीर होती नहीं, ये सीरत का पैगाम है। अब हम देखेंगे कि मदीना में क्या और रंग आते हैं। मदीना में तहरीक का नया मद्दोजजर, ये ताकत मक्का से नई स्पिरिट लेकर मदीना पलटी, तो दावत का काम अलल ऐलान बहुत ही जोरों शोर से शुरू हो गया। अब खुल के काम करेंगे ना, पहले तो दबे हुए थे मक्का में, अब मदीना में आए तो खुलेंगे। नौजवान जब किसी तब्दीली के नकीब बन के उठ खड़े होते हैं तो इनके मुकाबले में बुढ़ापे से गुजरती हुई नस्ल ज्यादा देर तक जम नहीं सकती। इसको हाईलाइट करें, ये दुआ करें आज हमारे माशरे के जवान भी खड़े हो जाएं। नकीब पे थे चौकीदार को, नकब लगाने वाले, सुराख करने वाले। इसी को अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना कि जब जवानों में एक रूह पैदा होती है ना तो फिर उनको अपनी मंजिल आसमानों में दिखती है। और जमे भी तो इसका दौर ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, और किसी तहरीक के मुस्तकबिल का अंदाजा करने के लिए जानना बहुत मुफीद होता है कि वो मैदान छोड़ती हुई साल खुर्दा नस्ल के बल बूते पे चल रही है या इसकी रगों में नया खून रवा है। सो मक्का में भी और खास तौर पर मदीना में नौजवान ताकत दावत इस्लामी के झंडे उठाए आगे आगे बढ़ रही थी। टीन्स को दीन पे लाएं, आप अपने घर में दीन लाना चाहते हैं, अपने बच्चों पे काम करें। यंगस्टर्स वो काम कर सकते हैं जो बूढ़े नहीं कर सकते। बूढ़े कौन होते हैं बेचारे, कॉम्प्रोमाइजिंग हालात का रोना रोने वाले, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, बाप दादा नाराज। तो बूढ़ों से ज्यादा जवानों पे काम करेंगे तो दीन जल्दी फैलेगा। इसका एक वाक्य भी इन्होंने बयान किया, नौजवान ताकत ने क्या कुछ ना कर लिया होगा, इसका अंदाजा एक वाक्य से होता है। बड़े बूढ़ों में से एक बुजुर्ग थे अमर बिन अल जमूख, आप इस पे अराब लगाइए ताकि आप भी ठीक पढ़ सके, अमर बिन अल जमूख, जिनका ताल्लुक बनी सलमा से था। इन बड़े मियाँ ने अपने घर में लकड़ी का एक बुत मनात नाम का फराहम कर रखा था। ये इसकी पूजा करते थे और इसकी झाड़ पोंछ में लगे रहते थे। बनी सलमा के दो नौजवान मास बिन जबल और मास बिन अमर दावत हक पर ईमान लाकर तहरीक इस्लामी के कारकुन बन चुके थे। मौखिरुल जिक्र, मौखिरुल जिक्र किनको कहते हैं, जिनका जिक्र बाद में हुआ, कौन से, मास बिन अमर। मौखिरुल जिक्र खुद ही नहीं बड़े मियाँ के साहबजादे थे, ये दोनों रात की तारीकी में जाते और बड़े मियाँ के खुदावन को कीचड़ में लतपत कर देते। कौन था उनका खुदावन, मनात, और उठाकर बनी सलमा के गड़े में उल्टा कर डाल आते जहां लोग गलाजत और कूड़ा करकट फेंकते थे। सुबह होती तो अमर बिन जमूह चिल्लाता, ये कौन है जिसने रात हमारे खुदावंदों पर दस्तराजी की है, यानी हमारे खुदाओं पे हाथ उठाया। फिर वो अपने खुदाए गुमगुश्ता को ढूंढता फिरता, नोट करें खुदा भी गुम हो जाता है, और जब पा लेता तो इसे धो धा कर संघासन पर ला बिठाता। अगली रात फिर यही हादसा पेश आता, बड़े मियाँ फिर इसी चक्कर में पड़े बुड़बड़ाते फिरे। एक दिन अमर ने तंग आकर अपनी तलवार बुत के साथ लटका दी और इसे खिताब करके कहा, खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि कौन तेरे साथ ये मामला करता है, अगर तुझ में कसबल है तो फिर खुद ही अपना बचाव कर, ये तलवार मौजूद है। शाम हुई और अमर सो गया। सो इस ड्रामे के दोनों किरदार रात को और तलवार बुत की गर्दन से खोल ली, फिर एक मरा हुआ कुत्ता तलाश करके इसके गले में रस्सी से बांधा और इसे एक अंधे कुएं में जाकर लटका आए। जिसानी गलाजत से हटा रहता था, सुबह उठकर अमर ने देखा तो फिर हजरत गायब थे, तलाश किया तो ये हालत जार देखा। इबरत का ये नक्शा देखते ही दिल ने करवट ली और वही अमर इस्लाम की सफों में आ खड़ा हुआ। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि मदीना की किस तरह काया पलट रही थी। आज भी अगर आपके इर्द गिर्द इस किस्म के वाकयात हो ना, तो आप सोचें कि तहरीक है, आप किसी को चिड़चिड़ाना और बात है और किसी को दीन पे लाना और बात है। और आपको तो ये अमर बिन जमूह लंगड़े थे, बाद में फिर इन्होंने इस्लाम के लिए कितनी खिदमात की। कहते थे जंग में मुझे ले जाओ और मुझे एक जगह खड़ा कर देना, मैं झंडा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मैं जन्नत में लंगड़ाता हुआ जाना चाहता हूँ। ईमान दिल की दुनिया बदल देता है। मुझे आपको टटोलना है अपने इर्द गिर्द वालों को कि हमारी जिंदगियों में क्या मामलात, किस तरह के मामलात हो रहे हैं, किस तरह से हम अपने आप को इन सारी चीज़ों में ले सकते हैं। ये चीज़ें मेरे आपके लिए बहुत अहम हैं और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो मेरे आपके लिए अपना जायज़ा लेने के लिए भी बहुत अहम है। जब तक मैं और आप इन चीज़ों को पढ़ के अपनी ज़िंदगी से इसको रिलेट नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि मदीना में इस्लाम आ रहा है, आप अपने ऊपर लीजिए ना, नॉर्वे में इस्लाम आ रहा है, ओस्लो में आ रहा है, आपके इलाके में आ रहा है, तो ये कुछ तो होगा, ये सब कुछ तो चलता ही जाएगा, जिंदगी का किस्सा है, होता जाएगा। अब क्या हुआ, तहरीक का एक नया मरकज। तहरीक हक का आसमानी लीडर बराबर सोच में रहा कि अगर मक्का के ज़र्फ़ में समाई नहीं और यहाँ की संगीन क़्यादत जहाने नौ की तासीस, तासीस कहते हैं नए सिरे से शुरू करना किसी चीज़ को, जहाने नौ की तासीस का मौका देने पर तैयार नहीं है, तो फिर ज़मीन का और कौन सा गोशा हो सकता है जहाँ ताकत को समेट कर तामीरी काम शुरू किया जा सके। पहले निगाह हब्श पर गई। हब्श क्या है? हबशा। और इसीलिए साथियों को वहां भेजा। अगरचे शाह निजाशी ने मजलूमी ने मक्का की हिमायत का हक अदा कर दिया, लेकिन एक तो वहां ईसाई उलमा का घटिया किरदार सामने आ चुका था और इनके छाए हुए असर के तहत दीन हक का पनपना आसान न था। दूसरे, वहां की मुकामी आबादी में बिल्कुल नए सिरे से काम करने की जरूरत थी और इसमें अजनबियत के बहुत से वजूह हायल नजर आते थे, इसलिए किसी दूसरे गोशे की तलाश थी। मदीना ने जब खुले दिल से दावत हक को लब्बैक कही तो सरवर आलम को उम्मीद की एक नई झलक नजर आई। बैत उकबा उला ने इस उम्मीद को मुस्तहकम कर दिया। फिर मुसअब बिन उमैर ने खुद वहां रहकर और कुछ अरसा काम करने के बाद बैत उकबा सानिया वाले मौसम हज से कुछ कबल आकर हजूर की खिदमत में रिपोर्ट पेश की, मदीना के मुसलमानों की तफसील बयान की, इनकी कुव्वत का हाल बताया और खुशखबरी दी कि वो इस साल बड़ी तादाद में आ रहे हैं। देखिए, 6 से 12 और 12 से अब ज्यादा, यही होता है। इस रिपोर्ट ने नबी सल्लम को गौर व फिक्र की दावत दी। ये सूरत हाल फिल वाकई बड़ी खुशाइन थी कि मदीना के मुसलमान तादाद और कुव्वत के लिहाज से दिन दिन रात रात बढ़ रहे थे और फिर यहूद की तरफ से इस तरह की संगीन मुखालफत का इनको सामना नहीं करना पड़ रहा था जैसे इनके मक्की साथियों को कुरैश की तरफ से दरपेश थी। और अहले यसरब मक्का वाले रफका के लिए बिल अमूम कुर्ते थे, इनको बहुत ज्यादा सहूलतें मुयसर थी, इनके यहाँ खेतियां थी और नखलिस्तान और ताकिस्तान थे। हजूर सोचते थे कि क्या ये अच्छा ना हो कि मक्का के रुफका मदीना चले जाएं और कुरैश के मजालिम से निजात पाकर दीन के तकाजे पूरे करें। चुना चाहने वाले लश्कर में जो लोग मुहर्रम थे यानी एहराम की हालत में थे, इनसे आपने इस ख्याल का इजहार भी फरमा दिया और बाद में जिस शक्ल में पैमान बांधा गया वो इसी पस मंजर के साथ था। क्या पता चला इस हिस्से से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हालात की नफ्स पे थी। अच्छा लीडर होता है ना, वो चारों तरफ नज़र रखता है, कौन क्या सोच रहा है, कौन किधर जा रहा है, उसकी क्या सोच है, वो क्या करेगा, उसका सोच किधर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए कि मक्का में बैठकर मदीना के लिए प्लान बना रहे हैं। ये बात ज़्यादा अच्छी है ना इस बात से कि वहाँ जाकर भी आप कुछ ना करें। तो यूं तो हिजरत हबशा से महाजरीन के लौट आने के बाद ही इक्का दुक्का रुफका आपकी इजाजत से मदीना जाते रहे, लेकिन बैत अकबा सानिया के बाद रफ्तार तेज हो गई और तकरीबन तय हो गया कि दूसरा दारुल हिजरत मदीना ही होगा। मैं इसको पढ़ते हुए भी सोच रही थी कि देखा जाए तो हबशा उस वक्त का एक नॉन मुस्लिम मुल्क था, एडवांस, ज्यादा उसके अंदर सहूलतें थी, लेकिन वहां दीन का पता नहीं लगा। हालांकि मुसलमान गए और उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, कह लीजिए कर्टसी का मुजाहरा भी किया, बट मदीना जैसी बंजर बस्ती ने इस्लाम के पौधे को कबूल किया। बड़ी बात है। हम बस वो क्या सोचते हैं, वहां चलें, बड़े रिसोर्सेज हैं, बहुत कुछ हो जाएगा, बड़े मुसलमान हैं वहाँ, वहाँ बहुत मुसलमानों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, किसी बिल्डिंग में काम हो जाएगा। नहीं होता। जहाँ अल्लाह सच्चाई के साथ बंदे को ले जाए वही काम होता है। ये मदीना उसकी गवाही है। क्या था मदीना में उस वक्त भी, आज तो मदीना बहुत बड़ी चीज है। आप कह लें कि नबी सल्लम के मदीना जाने से पहले शायद आपके पाकिस्तान का कोई छोटा सा गांव चीचों की मलियां या कोई और नाम जेन में ले आइए, उसकी भी क्या अहमियत है जो मदीना की थी, कुछ भी नहीं था। आज भी अगर आप जाके तो देखें, जरा ऊपर से एरियल सीन देखिए, ये हरम मक्का और हरम मदीना के अलावा इर्द गिर्द क्या है, पत्थर, खुश्क सूखी पत्थर। और ये लोग इतने आते हैं तो इधर इतनी मईशत और माशरत सारी दिखने में आती, वरना कुछ भी नहीं था। अब आप देखिए कि ये सारी चीजें जो है हमें क्या बताती हैं कि इन चीजों को करते वक्त बंदे को हमेशा हालात को सामने रखने की जरूरत है। अपने ऊपर लेकर सोचेंगे ना तो आपके लिए दीन के काम करने बहुत आसान हो जाएंगे। हम बस वह धक्के खाते हैं और सूखी जमीनों पे मेहनत करते हैं, निकलता कुछ नहीं वहां से। हमेशा देखिए कि एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, रिजल्ट वैसे तो अल्लाह के हुक्म से आते हैं लेकिन इंसानी समझ के मुताबिक एक अच्छे किसान की तरह बीज वहां डालिए जहाँ से सब्जा उगने की उम्मीद हो, वरना दूसरी जगह ढूंढ लीजिए। जमीनों के भी नसीब होते हैं, लोगों के भी नसीब होते हैं। खैर, सरदारा ने मक्का देख रहे थे कि तहरीके इस्लामी ने एक नया मजबूत मरकज पैदा कर लिया है। आप सोचे ना, वो तो मक्का में नहीं आपको बर्दाश्त कर पा रहे थे जहां आप इसे हुए थे, तो अब मदीना की जब खबरें आती होंगी, वहां ये दीन का काम होने लगा, मस्जिद नबी बन गई, मस्जिद कुबा बन गई, ये मुसलमानों का वो, तो उनके तो दिल पे सांप दौड़ते होंगे ना। जिनको इस्लाम से नहीं मोहब्बत, वो इस्लाम के फैलने से भी नहीं खुश होते। यही बात जहां समझ आती है, इनकी निगाहों में मुस्तकबिल बहुत भयानक हो कर आने लगा। वो अपनी जगह खूब समझ रहे थे कि अब अगर मदीना में कलमा हक की जड़ लग जाती है, तो हमारे हदूदो असर से बाहर ही ये कलमा एक नाकाबले शिकस्त ताकत बनकर एक दिन हमारी ही खबर लेगा, और हम ही को अपने करतूतों का हिसाब पाई पाई अदा करना होगा। वो इस खतरे को भी महसूस कर रहे थे कि शाम की तिजारती शाहरा चूंकि मदीना से होकर गुजरती, इसलिए मदीना का नया इस्लामी मरकज शाहराह की नाकाबंदी कर सकेगा। देखिए, मक्का इधर है, मदीना यहाँ है, तो शाम इधर है। मक्का वालों की तिजारत शाम से होती थी, तो रास्ते में मदीना आ रहा है, तो उनके लिए खतरा है ना। अगर मदीना मुसलमानों की चेक पोस्ट बन गई, तो मक्का वालों को तो फिक्र होगी ना। इसके बरक्स मदीना से कोई शाम जाता है, तो उनको मक्का रास्ते में नहीं आता। तो हालात ऐसे लग रहे थे कि सब मुसलमानों के हक में जा रहे हैं, तो इसलिए मुशरिकीन ने मक्का फिक्रमंद हो गए। इस तरह इनकी मुआशी शाहरग कट जाएगी। जाहिर बात है, अगर मुसलमान रास्ता रोक लेंगे तो इनके काफले आगे नहीं जा सकेंगे। इस पर अंदर ही अंदर घबराहट का दौरा पड़ चुका था, मगर समझ में ना आता था कि क्या करें। वो दिन रात इस अंदेशे में रहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी पूरी जमात कहीं हाथ से ना निकल जाए। इसी अंदेशे के जेरे असर वो बिलाखिर साहिब नबूवत कत्ल के मंसूबे बनाने पर उतर आए। एक तारीखी ताकत जो इनके अपने घर से उभरी और सारी दुनिया से ज्यादा इनकी अपनी थी, इसे अपने ही करतूतों से गैर बना दिया और खुद इसके दुश्मन बन खड़े हो गए। बस अब जूं जूं वो जोर पकड़ती थी, इनके लिए एक जानलेवा खतरा बनती जा रही थी। चुनाचे पहला मुहाजिर जब मदीना के इरादे से निकला, तो मक्का वालों ने इसके साथ जफाकाराना मामला किया, यानी बुरा मामला किया। ये अव्वलीन मुहाजिर अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद महजूमी थे। ये बीवी बच्चे को ऊंट पर सवार करके निकले। इनकी बीवी बनु मुगीरा में से थी। वो लोग ऐन रवानगी के वक्त तुंदी में आए, यानी जल्दी में आए, और उम्मे सलमा के ऊंट की मुहार ये कहकर अबू सलमा से छीन ली कि इसे हम तेरे साथ दर दर फिरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। यानी मैके वाले आए बीवी के और बीवी को ले गए। इस जज्बाती सूरत हाल ने अबू सलमा के कबीले वालों में सख्त रद्द अमल पैदा कर दिया। उन्होंने बनु मुगीरा से कहा, अगर तुम हमारे आदमी की बीवी इससे यूं छीनते हो, तो फिर हम अपना नन्ना बच्चा इसकी गोद में न रहने देंगे। नोट करें, हकदार कैसे हक लेने आगे, बीवी के मैके वाले बीवी को ले रहे हैं, अपने घर वाले इनके बच्चे को ला रहे हैं कि वो इनका बच्चा नहीं था, लेकिन दादा दादी की तो हमारी नस्ल है, तो हम तो इसको नहीं जाने देंगे। हुआ क्या होगा, शौहर बीवी और बच्चा तीनों बिछड़ गए। हमें तो रोना ही पड़ा आता है अगर हमारे बच्चों को थोड़ी देर इधर उधर करना पड़े और हमारे शौहरों की खाने का वक्त इधर उधर हो जाए। लिटरली देखिए, सिर्फ और सिर्फ दीन की वजह से जुदा हो गए तीन लोग, बच्चा कहीं, माँ कहीं, और इसी आलम में अबू सलमा ने कूच किया। कितना सख्त दिल था अबू सलमा का ना, जरा भी बीवी से प्यार ही नहीं था, और बेटे की तो कोई जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की। ये दीन आपसे कुर्बानियां मांगेगा, फिर ही दीन के पौधे पे बहार आएगी। उम्मे सलमा नित सुबह को आकर शहर से बाहर इसी मौके पर जारो कतार रोने लगती। आखिर साल भर के बाद किसी को रहम आ गया, 1 साल की कुर्बानी है, थोड़ा नहीं है। हम तो 1 घंटा लेट हो जाए तो हम तो रोने लग जाए, अब जुदाई में बर्दाश्त ही ना कर सके। और इसने बनु मुगीरा से कैस सुनकर ऊंट पर सवार करा के उम्मे सलमा को बच्चे समेत मदीना रवाना कर दिया। वो तन तनहा चल खड़ी हुई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक मुकाम पर उस्मान बिन तलहा मिल गए और उन्होंने इस मुहाजरा को हवालिए मदीना में पहुंचा दिया, यानी जहां उनके शौहर थे। तो ये कुर्बानियां दिए बगैर दीन नहीं फैलता। आज तो अल्लाह हमसे ये थोड़ी मांगता है कि हम घर छोड़ के भाग जाए या बच्चों को शौहरों को देखना छोड़ दें, ये तो नहीं मांगता। बस ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को। यानी हिजरत हबशा के तल्ख तजुर्बे के बाद अब पॉलिसी ये ठहरी कि खुदा परस्ताना निजाम जिंदगी के अलम बरदारों को अपने काबू से निकलते हुए रोका जाए। वो निकले तो ऐसी हालत में निकले कि इनका कुंबा कबीला बतौरे यरगमाल मक्का वालों के पास रहे। यरगमाल क्या, यानी जिनको हम फिर इस्तेमाल कर सकें, उनकी जगह पे टॉर्चर दें या उनको नुकसान दें। ये पॉलिसी शुरू में जरा ढीली ढाली थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें सख्ती बढ़ती गई, हद तक हजरत उमर, अय्याश बिन अबी रबिया, हिशाम बिन आस बिन वाइल दौरे आखिर में ऐसे आलम में छुप छुपा कर निकले कि हर वक्त धड़का था कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। सच बात है, हमने तो वो वक्त ही नहीं देखा, और अल्लाह ना दिखाए मजीद कोई सख्ती दीन की। हम तो घरों में बैठे हुए नखरे कर रहे हैं, हमारे अंदर तो वो दर्द नहीं आ रहा अभी तक भी कि जो हमें पिघला के रख दे, जिस पे कम अज कम हम खुश तो हो जाएं कि अल्लाह तूने हमें ऐसे गए गुजरे दौर में चुन लिया इन कुर्बानियों के लिए, जो उन कुर्बानियों का श्रेय अशीर भी नहीं जो अल्लाह के नबी और सहाबा ने दी। तो खुद को खुशकिस्मत कहें अगर आप में से कोई इन मराहल से गुजरे तो। हजरत उमर और अय्याश बखैरियत मदीना पहुंच गए। मक्का से एक साजशी वफद इनके पीछे रवाना हुआ, यह अबू जहल बिन हिशाम और हारिस बिन हिशाम पर मुश्तमिल था। ये लोग जाकर अय्याश से मिले और कहा कि तुम्हारी वालदा का हाल अबतर है, यानी बुरा हाल है, और इसने कसम खा ली कि जब तक तुमसे ना मिलेगी सर के बाल ना संवारेगी और चिल चलाती धूप में खड़ी रहेगी। साथियों ने समझाया कि ये वाज़े तौर पर एक चाल है, तुम एक बार मक्का वालों के फंदे में फंस गए तो ये तुम्हें दीन से हटा देंगे। अय्याश को एक लालच ये भी था कि वो मालदार आदमी थे और कुछ माल निकाल लाना चाहते थे। हजरत उमर ने पेशकश की कि मैं इससे ज्यादा माल रखता हूँ और तुम मुझसे आधा माल ले लो, इन दोनों के साथ ना जाओ। अय्याश ना माने। हजरत उमर ने कहा, अच्छा अगर यही तय है तो मेरी असील ऊंटनी ले जाओ, जहां कोई अंदेशा महसूस हो भाग निकलना। मगर मक्की साजिशों ने रास्ते में ऐसी चाल चली कि असील, असील कहते हैं बहुत सुधाई हुई अच्छी, असील ऊंटनी से फायदा उठाना भी याश के बस में ना रहा और इनकी मुश्किलें कस ली, यानी उनको बांध दिया। अहले वफा जब मक्का पहुंचे तो उन्होंने लोगों से कहा कि देखो यूं इलाज करो अपने अपने अकल के मारों का जैसे हमने किया, यानी अब उन पर टॉर्चर करेंगे। बाद में हजरत उमर ने दस्ते खास से खत हिशाम बिन अलास को लिखा और इसमें मशहूर आयत या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिकुम दर्ज की। इस खत को मक्का के पास ज़ीतुआ नामी मौके पर हिशाम ने पढ़ा, बार बार गौर किया और जब बात पाली कि इसमें इशारा खुद इसकी जानिब है तो फौरन ऊँट लिया, कजावा कस्सा रवाना हो गया। लेकिन इससे ज्यादा मजबूत रिवाज है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ला चुके थे तो एक दिन मजलिस में इन दोनों महबूसिन, महबूसिन कौन होते हैं जिनको कैद कर दिया गया, इनका जिक्र छिड़ा। आपने फरमाया कि याश बिन अबी रबिया और हिशाम बिन आस को निजात दिलाने के लिए कौन मुझे अपनी खिदमात सौंपता है। वलीद बिन मुगीरा ने अपने आप को पेश किया। वलीद हुक्मे नबवी के मुताबिक मक्का रवाना हो गए, छुपते छिपाते आबादी के करीब आए। एक औरत खाना ले जाती नजर आई, पूछा अल्लाह की बंदी किधर को जा रही है। उसने जवाब दिया यहाँ दो कैदी हैं, ये खाना उनके लिए है। वलीद पीछे हो लिए, वही दोनों थे और एक बेछत के मकान में बंद थे। शाम हो गई तो ये दीवार फांद कर उतरे, इनकी बेड़ियों के नीचे पत्थर रखकर अपनी तलवार से इनको काट डाला, फिर बाहर निकालकर दोनों को ऊंट पर बिठाया और राहे फरार इख्तियार की। इस तरह अक्सर लोग अगर निकले भी तो मक्का वालों ने इनसे अम्वाल रखवा लिए, जैसे बहारत से जाने बचाकर निकलने वाले बहुत से मुसलमानों के साथ हुआ। लेकिन हिजरत की इस दर्जा जिगर आजमा होने के बावजूद मर्द ही नहीं, खवातीन भी बराबर ज्यादा फर्ज पर इकदाम कर रही थी। तहरीक इस्लामी का ये एजाज अपनी मिसाल नहीं रखता था कि आज से सदियों पहले के वहशी अरब की अनपढ़ खवातीन तक में इस जिंदगी बख्श ताकत ने एक जोरदार हरकत अमल पैदा कर दी थी। सच्चा ईमान अंदर आता है ना तो बंदा बदले वगैरह रहता नहीं है, याद रखिए औरत हो या मर्द सब के अंदर अल्लाह ने ये हिस रखी है। मुहाजरीन के रास्ते में रुकावटें डालकर कुरैश अपनी बौखलाहट का मुजाहरा कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ जिस शख्सियत से सबकब था वो आली हौसलगी की ऊंची चोटी पर खड़ी थी। वो कौन था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें भी इतना हौसला दे दे। वह समंदर का सा वसी जर्फ था, वो पैकर सब्र इस्तकलाल ठंडी अजीमत और ठहराव वाली फितरत से आरास्ता था। चुनाचे वो अपने मरकज़ दावत पर डटा रहा, इसे आखिरी हद तक इत्मा में हुज्जत का फरीजा अदा करना था, यानी साथी तो जाते गए मक्का से लेकिन अल्लाह के नबी अभी मक्का में थे। पहले मक्का के खिलाफ मशीयत इलाही के खेल को तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना फर्ज सब्र व तहम्मुल से अदा कर रहा था। उसकी मिसाल डूबते जहाज के बहादुर कप्तान की सी थी کہ جو سارے عملے اور سارے مسافروں کو سلامتی کی کشتی پر سوار کرنے کے بعد سب سے آخر میں جہاز کو چھوڑنے والا تھا. دیکھیے اگر اللہ کے نبی اپنی جان بچاتے تو سب سے پہلے خود مکہ چھوڑتے, سب کو نکال کر پھر خود نکلے, جب بجز ایسے چند افراد کے کوئی باقی نہ رہا جنہیں قریش کے جبر نے محصور کر رکھا تھا, یعنی قید کر رکھا تھا, یا جن کو کسی مفاد یا مصلحت نے باندھ رکھا تھا. تو اس وقت آپ کو آسمانی حکومت کی طرف سے پروانہ ہجرت ملا. آپ نکلے تو ایسے عالم میں نکلے جب کہ مکہ والے آپ کو زندہ دیکھنے کے روادار نہ تھے, اور جب نکلنے کی گھڑی آ گئی تو خون کی پیاسی تلواروں کے گھیرے میں سے آپ بے خوفی کی شان سے نکل گئے. ہم اپنا جائزہ لیں, کیا ہمارے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جرأت, بہادری, لیڈرشپ, کمٹمنٹ ہے؟ یہ امت کو آج چاہیے. ہم تو چھوٹی سی بات سن کے پیچھے ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اسلام پہ بڑی سختی ہے, نہیں مجھے باتیں نہیں سننی. تو اللہ کے نبی کی تو جان خطروں میں تھی, عزت پہ تو خطرہ ڈالا ہی ہوا تھا, انہوں نے نقصان تو آپ کو دیا ہی تھا. تو بس دعا کریں کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کوئی تڑپ پیدا کر دے. یہاں رکیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.